महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूं भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में द्वितीय जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 39 पर आगे 39। स्वामित्व का अपना प्रकरण चल रहा है और ओघ में देखने के बाद अभी हम मार्गणाओं में देख रहे थे। अब यहाँ हम लेशा मार्गणा को पढ़ने जा रहे हैं। परिहार विशुद्धि छूट शक्ति इसका अर्थ हुआ ना, हमने कल देखा था उसके उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है, तो जो सामयिक छेदोपस्थापना के सम्मुख है। हाँ, और वो भी प्रमथ संयत वाला, ऊपर चढ़ने वाले की छूटती हो तो पता था। हाँ, मन परे भी वो भी असंयत होता है, ऐसा मिथ्या तो नहीं करता। हाँ, हाँ। वो विपुल मति नहीं छूटता मेरे ख्याल से। हाँ, विपुल मति, और विपुल मति उसी भाव में मोक्ष भी जाता है। अभी हम लेशा मार्गणा की बात करेंगे। कृष्ण लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो तिर्यंच गति का जीव संगी है। तिर्यंच गति वाले को लिया। हाँ, अब देखते हैं यहाँ क्या कहना चाहते हैं। जो तिर्यंच गति का जीव संगी है, मिथ्या दृष्टि है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत उपयोग से उपयुक्त है और उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला है, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। ये क्या कारण हो सकता है, कृष्ण लेशा वाला नारकी को क्यों छोड़ा?
मनुष्य
भी नहीं लिया है। मत्स्य ही है, परंतु ये
वाला जीव सात नरक के जाने का परिणाम करता है।
बात सही है,
निकलने का परिणाम करता है।
परंतु संकलेश उत्कृष्ट उसके तो हो ही सकता, हमने तो गुणित कर्मांशिक में गुणित कर्मांशिक को लिया था हमने सातवें नरक के लास्ट में, उसने
सातवें नरक को अपन सबसे ज्यादा माना था।
और केवल उत्कृष्ट संकलेश नहीं, उसमें तो ईषत मध्यम से भी बंद होता है, तो उसको क्यों नहीं लिया, प्रश्न मुझे नहीं।
नहीं,
वो तो बात है। नहीं नहीं, हाँ,
प्रदेश
ये स्थिति बंद है, ईषत मध्य भी नहीं है, उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला।
ये बात तो है सही, क्योंकि आप ये देखिए ना कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक वाला जीव नहीं करता है, नरक में जाने वाला जीव करता है।
क्योंकि संकलेश के अभिमुख, मिथ्यात्व के अभिमुख वाला चौथे
में जाने वाले के जो है ना, उसके ज्यादा मतलब नरक में है, उससे ज्यादा
नरक में है
वो तो प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं करता है, नरक में जाने वाला उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है,
क्योंकि हमेशा वो मिथ्या तो के नीचे के गुणस्थान के अभिमुख वाला ले आया।
हाँ, नरक गति के मन के साथ मैक्सिमम संतुलित हो सके
यहाँ लिखा इसलिए सोच रहे हैं,
अभी पता नहीं अभी आएगी बात आगे चलकर। अब कहते आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो तीर्यंच या मनुष्य संगी है, पर्याप्त है और तत्प्रायज्ञ संक्लेश परिणाम वाला है। कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट आयु की चल रही है, ऐसे उत्कृष्ट आयु की बात हमने तो समय यानी योग में उत्कृष्ट आयु कौन बनता है, तो समय दृष्टिया मनुष्य, समय दृष्टिया मिथ्या दृष्टि, उसमें से तो 33 सागर के नरकायु बांधने वाला भी लिया और देवायु बांधने वाला, यहाँ कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट आयु तो नरक की ही होगी। तीन इंच मनुष्य लिया और वो भी मिथ्या दृष्टि लिखी है, यहाँ लिखे नहीं मगर वो तो जाहिर है। अरे वो तो केवल समय दृष्टि नहीं, संयत बांधेगा, संयत बांधेगा और तभी उसके कृष्ण लेशा होगी क्या?
नहीं,
कृष्ण लेशा तो 14 तक है और कृष्ण लेशा में भी आयु यदि समय दृष्टि तो उसमें वो तो समय दृष्टि होने के बाद यदि बांधती है, बांधता है आयु तो देवायु कोई बांधेगा तो कृष्ण लेशा के टाइम में नहीं बांधेगा वो जी। हाँ देखो देखो, तीर्यंच या मनुष्य संगी है, पर्याप्त है और तत्प्रायज्ञ संक्लेश परिणाम वाला है। आयु में हमेशा तत्प्रायज्ञ शब्द लगाते हैं, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है, यानी वो 33 सागर के नरकायु बांध रहा है, संक्लेश वाला लिया ना। नील और कापोत लेशा में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, कोई एक नारकी 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है, क्या बात। नील और कपोत में नारकी को लिया और कृष्ण में तिरंज को लिया, ये बात कुछ नई है अपने लिए। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कृष्ण लेशा के समान है, क्योंकि वो 33 सागर वाली लेना है नहीं, परंतु नील लेशा में उत्कृष्ट आयु कितनी बंधेगी, 33 सागर की तो नहीं बंधेगी, नील और कपोत में वहां की 22 की बंदेगी, 17 की बंदेगी, नील का उत्कृष्ट अंश कहाँ है, 17 में है ना,
उसके बाद में चालू रहता है।
हाँ ऐसे लगता है कि वहाँ उतनी होगी, नील लेशा में उत्कृष्ट क्या छठे में, हाँ है ना। देखो अद्धा छेद में कुछ है क्या, देखो नील लेशा वाला उत्कृष्ट आयु कितनी बांधता है, हमने देखा था ये, पृष्ठ है मैंने जगन्य का निकाला, अभी किस में देखना है, हमने लेशा में, वेद वाला उसके पहले होगा ना, वेद नहीं, वेद के बाद कहाँ मिला, 18 मैं उसके आगे पढ़ रही हूँ, 19 के आगे, हाँ देखो देखो ऊपर ही है, 18 पेज में ऊपर, नील आदि 4 लेशा वालों के आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध क्रम से 17 सागर प्रमाण नील के लिए, कपोत के लिए 7 सागर प्रमाण, फिर पीत के लिए 2 सागर और पद्म के लिए 18 सागर, कृष्ण की अलग बात नहीं बताई ना,
हम आगे 5 लेक्चर
वो ओह के समान कुछ बताना था इसलिए वो बताया, ओह के समान बताने के लिए। हमने तो उत्कृष्ट बंध तो चारों गति के देखे थे, परंतु यहाँ भी स्वामित्व में तो तीरंज को लिया सात कर्मों के कृष्ण लेशन। देखो 18 पेज पर हमने वो बात देखी थी, वहां कृष्ण लेशा वाले के तैतीस सागर होगा। कहाँ पढ़ रहे थे हम, 39 पेज पर है ना। देखो अभी जो हमने देखा था ना, 33 नहीं 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 मिला, परंतु हमने वहां लिख के रखा। अभी यहाँ तो कृष्ण लेशा की बात आ गई है, कहाँ से पेज 39 से वहां हमने रेफरेंस ले लिया, और यहाँ 39 पेज के लिए वो रेफरेंस नंबर 18 देखिए कि नील और कपोत लेशा में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कृष्ण लेशा के समान कहा। कृष्ण लेशा के समान कहने का प्रयोजन क्या है? नहीं वो क्योंकि नारकी यदि आयु का बंद करेगा तो अल्प करेगा ना, पूर्व कोटि का करेगा, और तिरेंच मनुष्य ज्यादा करेंगे, तो तिरेंच और मनुष्य इसमें भी लगा लेना। संगी है, पर्याप्त है, सब प्राय संकलेश वाले हैं, तो कितना करते हैं ये अध्याय छेद लिखने के लिए हमने वो पेज नंबर 18 का यहाँ रेफरेंस दिया, क्योंकि नील में हमने देखा था 17 सागर और कपोत में सात सागर, तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु। देखो पीत लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब यह देव को पकड़ा होगा, कोई एक सौधर्म और ईशान कल्प तक का देव, तक का लिया यानी भवनत्रिक और सौधर्म ईशान कल्प का नहीं का कल्प तक का देव, सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है। अति संकलेश परिणाम करता है, एक ही जैसे बंद करता है तो वहां तो
और पीते हैं तो भवराशि में भी होती है उनकी संकलेश।
वही वही तक लिया ना, सौधर्म ईशान तक करते हैं। हाँ सब आ गए, भवनत्रिक और सौधर्म ईशान। आयु आयु की नहीं नहीं, मनुष्य तीरंज पीत लेशा में इतनी नहीं बांधेंगे, मनुष्य तीरंज पीत लेशा में इतना वो तो उनके लिए वो तो विशुद्ध ही जैसा है। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी अवधि ज्ञानी के समान है। नहीं पीत लेशा में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध का, अच्छा अभी हमने देखा था ना 18 पेज पर साधिक दो सागर, पेज 18 पर हमने देखा था
स्वामी
प्रमत्त संयत लिया। प्रमत्त से पीत लेशा में आयु बांधता है तो यहाँ तो दो सागर में लेना, साधिक दो सागर।
जो अवधि ज्ञान का सब उसकी बात करें उनको अवधि ज्ञान के समान है।
हाँ हाँ 38 पर लिखा। देखो अभी हमने अभिनिबोधिक श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञानी की बात की थी, तो आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है, मिला आपको 51 नंबर के पॉइंट में। तत्प्राय के विशुद्ध परिणाम वाला प्रमत्त संयोज जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है। वो हमने देखा था कि सातवें वाले को नहीं लेते यहाँ पर,
छठे वाले को लेते हैं,
क्योंकि आयु बंध की शुरुआत छठे में हो सकती है और वो पहले समय में अधिक बांधते हैं, दूसरे समय में कम, वो तो बात आ गई उसमें। पद्मलेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, अन्यतर सहस्रार कल्प तक का मिथ्या दृष्टि दे, तक लगाया यानी पद्मलेशा वाले कहां से लेना, सनत कुमार से लेना, सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक के मिथ्या दृष्टि दे सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। मनुष्य तीन इंचों को लिए लेशा होती है, परंतु उस लेशा में तो हाँ विशुद्ध तरफ है, तो उनके तो स्थितिबंध कम होगा, उनके तो मात्र कृष्ण, ये तो कृष्ण में होगा वो कृष्ण स्थितिबंध। अभी इसी पद्मलेशा में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी पीतलेशा के समान है। पीतलेशा की ने प्रमत्त संयत और उसका कितना बताया था, 18.5 होगा ना, शादी 18 में कितना शादी के लेना, अभी मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है तो समय प्रमत्त को लेना है, स्वामी प्रमत्त को कहा तो मिथ्या दृष्टि कैसे होगा, नहीं समझा। आयु उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को घटित करेंगे तो उसकी तो कम होगी ना आयु, परंतु उसको नहीं लेना है, प्रमत्त संयत उत्कृष्ट आयु बांध रहे हैं।
और उसको घातायुष हुआ,
हाँ घातायुष की है, तो 18 सागर के ऊपर अंतर्मूर्त कम आधा सागर है, कुछ ये अंतर्मूर्त कम आधा सागर होता है ज्यादा नीचे, जहाँ जहाँ हम साधिक कहते हैं, पहले नरक में भी दो साधिक दो सागर है, ढाई सागर जो कहते हैं तो उसमें अंतर्मूर्त कम, नहीं नहीं वो है पढ़ा हुआ है, मगर ये भूगोल में भी हमने वो अंतर्मूर्त की बात नहीं की।
अगर मिथ्या दृष्टि का केस होता तो पल्ले का संख्या दबा लेते,
परंतु वो तो उत्कृष्ट आयु नहीं है, वो उत्कृष्ट बंध की बात चल रही है अपनी, हाँ पहले ज्यादा बांध के उसके घातायुष को हुआ है और वहां तक ही घातायुष को पाया जाता है। और यहाँ अपनी पद्मलेशा की बात है इसलिए वहां तक की बात है। शुक्ल लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, अन्यतर आनत कल्प का मिथ्या दृष्टि और तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला देव सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। देखो शुक्ल लेशा तो ऊपर तक है, ये मिथ्या दृष्टि हुआ है, मिथ्या दृष्टि का, परंतु ऊपर तो शुक्ल लेशा का तो बढ़ता हुआ है ना उत्कृष्ट, नीचे जघन्य अंश है इसलिए आनत वाला लिया, शुक्ल लेशा का जघन्य अंश है वहां।
यहाँ पे उन्होंने लॉजिकली लिया, लेकिन वहां पर भवनत्री को सुगम लेशा में जो हम बात कर रहे थे पीत लेशा की, तो वहां तक लगा देता, मतलब भवन
वहां तक लगाए,
इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो उत्कृष्ट अंश पीत लेशा का भी पाया जाएगा सुगम लेशा में,
कृष्ण ने जघन्य जघन्य कहना पड़ेगा, सात कर्मों के लिए तो जघन्य अंश कहना पड़ेगा, संतुलित ज्यादा है इन्हें पीतकर जघन्य अंश लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक इंद्रिय का बंध वहां तक के जीव करते हैं तो कुछ संकलेश वाले करेंगे तो उसको ले सकते हैं। तथा प्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है, ये तो हमने पहले भी देखा था। तो कितनी होगी ये उत्कृष्ट आयु? हाँ 33 साल। यानी 33 अगर की उत्कृष्ट आयु कौन मानता है? छठे का सातवें वाला, छठे वाला 33 अगर की आयु बांधने वाला आयु कहाँ बांधता है? तो छठे में बांधता है, स्टार्टिंग वहां है, वही उत्कृष्ट है। फिर आपने कहा ना, कल ही बताया ना, वो घटती चली जाती है आगे। हाँ ये तो हो गया,
ऑप्शन जरूरी नहीं है, उत्कृष्ट आया ऐसा कुछ कोई भी हो सकता है छठे वाला।
हाँ जरूरी नहीं कि वो उपशम श्रेणी चढ़े, हो सकता है 33 अगर की आयु बांधने वाला ऊपर जाके वहाँ मरण हुआ, वो हो सकता है। आयु का बंध तो छठे में ही होगा, सनन के तो नियम है ही, बिल्कुल है,
सनन की है।
बिना सनन के वो तो उतनी आयु ऊपर की बांधेगी नहीं। उत्कृष्ट 3 सनन हो तो ग्रहवेग आदि ऊपर में जा सकता है, ग्रहवेग में सर्वार सिद्धि के लिए तो बिल्कुल। हमने देखा स्वर्गों में कौन से सहनन वाला कहाँ तक जाता है, इसके सारे नियम है।
तो भी अपने पंचम काल में मुनि सोलह तक जाएंगे, मतलब
बिल्कुल हाँ ऊपर नहीं जा
सकते।
कैसे जाएंगे बिना सहनन के? ऊपर नहीं जाएंगे,
सोलह तक ही।
हाँ सोलह तक जा सकते,
जैसे मुनि को ऊपर इसलिए जा रहे हैं उनका सहनन नहीं, उच्च सहनन नहीं, तो गृह जा सकते थे।
नहीं उसके लिए भी नीचे कौन से, नीचे के 3 सहनन में से भी कौन से कहाँ तक जाएगा उसका भी नियम है ना। निकालना आया है प्रश्न तो निकालेंगे, कौन से सहनन वाले? नहीं वो तो जो सिद्धांत है ना, यह कोश हुआ
दो व्यक्ति मेरे देखे गए, एक मेरे फादर वो यही पढ़ते थे, ये गिफ्ट यही देते थे।
अच्छा एक है और इंदौर के कोई है, वो कहते हम इसी से स्वाध्याय करते
हैं। हाँ ऐसे मैंने सुना है, तो उसकी स्वाध्याय करते हैं।
चलो चलो हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप ढूंढना। अब सम्यक तो मार्गणा की बात चलेगी, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर 4 गति का जीव असंयत सम्य दृष्टि है और तत्प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाला है, वह 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी। ये तो आसान है ना, किसमें ठीक है। हाँ आयु कर्म के अभी क्षायिक सम्य दृष्टि में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? तो कहते प्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। उपशम सम्यक दृष्टियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंयत सम्यक दृष्टि तत्प्राय के उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला है और मिथ्यात्व के अभिमुख है। उपशम समय तो प्राप्त किया है, अभी गिरकर मिथ्यात्व में जाने वाला है, बोलिए। वह 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। सासाधन समय दृष्टियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर 4 गति का जीव सबसे अधिक संकलेश परिणाम वाला है। देखो ये पढ़ेंगे अभी हम, सहनन की अपेक्षा गति प्राप्ति ये जो बताया है, तो हम पहले स्वर्गों की बात देख रहे हैं। तो 5 अनुत्तर तक एक ही पहला सहनन है, नौ अनुदिश तक एक से चार बताया अनुदिश तक है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी मैं आगे का नरक का पढ़ रही सॉरी इसमें दोनों बताए हैं नरक के और देव के दो कॉलम। हाँ हाँ देखो सहनन और प्राप्तव्य स्वर्ग प्राप्तव्य स्वर्ग पहला सहनन पांच अनुत्तर तक अनुत्तर तक क्यों लिया वो नीचे भी जा सकता है ख्याल में है नहीं बात और नीचे नहीं जाता वो कहाँ की बात है बहुनत्रिक में जाएगा कि नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा सारे भोग भूमि वाले तो सहनन उत्कृष्ट सहनन वाले होते हैं। यानी हम तक लगाए ना इसलिए हाँ पहला सहनन अनुत्तर तक पांचों लेना हाँ सर्वासी की तक अब पहला दूसरा नौ अनुदिश तक अब पहला कहने की जरूरत ही नहीं थी वो अनुत्तर तक बता दिया था यानी दूसरा अनुदिश तक ही जा सकता है ऊपर नहीं दूसरा वाला
पहला बताने की जरूरत नहीं
हाँ पहला बताने की जरूरत नहीं थी
नौ अनुदिश
हाँ नौ अनुदिश यानी वो ऊपर अनुत्तर में नहीं जाएगा
अनुदिश में कोई भेद नहीं है
अनुदिश में एक ही लेवल पर है ना सारे अनुदिश एक सतह पर नौ विमान है एक के ऊपर एक नहीं है अब तीसरा सहनन वाला नौ ग्रह वेग तक
मध्यम
वो तो नीचे के तीन ग्रुप मध्यम तीन ग्रुप ऊपर के थे नौवे तक जा सकता है अभी चौथा सहनन वाला अच्युत तक जाएगा चौथा जाता है ना पहले दूसरे तीसरे भी जाएंगे ही जाएंगे अच्युत ने सोलहवे स्वर्ग तक पांचवे यानी एक से पांच तक के सहस्रार तक और छठे सहनन वाले सौधर्म से कापिष्ट तक लिखा कापिष्ठ तक यानी कापिष्ठ तक सौधर्म में लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे कापिष्ठ तक लिखनी है नहीं 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 लांतो कापिष्ठ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ सातवा आठवा देखो सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ आठवीं तक हाँ आठ बारह सोलह
अभी तो तीन सहन नीचे के तीन सहन है
हाँ तो नीचे के तीन सहन का अर्थ सोलवे तक ही जा सकते हैं सोलवे तक आए ना उसमें भी तीन में से भी उत्कृष्ट सहनन हो तो अर्धन आराज वाला हो तो मुख्यतः तो छठे सहनन की है इस काल में ये तो ठीक है अब नरक में पहला सहनन सातवीं पृथ्वी तक यानी सातवें नरक तक एक और एक से चार सहनन किसके होता है स्त्रियों को और बाकी ऊपर मनुष्य के मत से तो आ ही गए यानी सातवें में जाने वाले मनुष्य और मत से ही है हम वो इसके हिसाब से देखिए ना दूसरा तीसरा चौथा चौथे तक के सहन यानी दूसरा तीसरा चौथा ये सारे दूसरा तीसरे चौथे सहनन वाले छठे तक जाते, छठे तक एक से चार,
दो तीन चार,
हाँ यानी एक से चार लिखेंगे तो भी चलेगा, छठे तक। एक से पांच, एक से पांच में सिंह है वो पांचवी तक, सिंह और बाकी ऊपर के है वो पांचवी तक, पांचवें नरक तक। सिंह और एक से पांच सहनन में जो भुजंग है सर पर वो चौथे तक, यानी पांचवा सहनन वाला सिंह है वो पांचवें नरक तक और सर्प है वो चौथे तक, भुजंग कहा उसे।
एक मनुष्य है सातवा नरक, एक से चार छठा,
हाँ एक से पांच सिंह, सिंह पांचवें तक और भुजंग चौथे तक। अभी एक से छह सहनन में पक्षी है वो तीसरे तक, सरीसृप है दूसरे तक और असंगी है वो पहले तक, पहली पृथ्वी तक, पहले नरक तक। मेरे सहनन कुछ भी हो पक्षियों को वो तो तीसरे नरक तक ही जाएंगे, सरीसृप है वो दूसरे तक ही जाएंगे, असंगी है वो पहले नरक। अभी जो कुछ यथा होगा उनमें सहनन, एक से सह पक्षी प्लस ऊपर के जो है अभी तक हम जो देख के आए, यानी सातवें में देखो जीवों की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो सातवें में कौन जा सकता है, मनुष्य और मत्स्य, हाँ फिर मनुष्य मत्स्य और स्त्री छठे तक जाएंगे, ये ऊपर के मनुष्य मत्स्य स्त्री और सिंह पांचवे तक जाएंगे, ऊपर के सभी पर सरीसृप चौथे तक जाएंगे, फिर पक्षी तीसरे तक जाएंगे, सरीसृप दूसरे तक जाएंगे, असंगी पहले, असंगी तीर्यंच
पंचेंद्र,
असंगी को भी क्योंकि करोड़ पूर्व की आयु हो सकती है तो उसके सहनन भी हो सकते हैं। अभी पता नहीं, यानी उसका ऐसा रोल नहीं हम कर सकते, परंतु
हाँ शेर का सहनन कौन सा होता
है, सिंह को तो पांचवा बताया है, कौन सा सहनन अभी हमने
देखा,
हाँ दोनों ही नहीं है तो क्या हुआ, ये शरीर की रचना की क्या बलवान सामने से लड़ेगा तो हाथी जीतेगा, सामने से लड़ेगा वैसे तो अष्टापद को ज्यादा कहते हैं ना, उसके सामने तो शेर भी भाग जाता है, हमेशा वर्णन आता है
अच्छा
अष्टापद ऐसा प्राणी है कहीं से भी उसको फेंको ऊपर भी चार पैर है नीचे भी चार पैर, उल्टा भी गिरेगा तो चार पैर के ऊपर फेंको, सीधा भी गिरेगा तो चार, ऐसा सिद्धांत कोष में लिखा है,
हाँ।
अष्टापद तो हमने कभी देखे नहीं,
उसका तो वर्णन शास्त्र में आता है और कहीं नहीं, हाँ उसमें था जो हनुमान की जो है ना,
हाँ।
अंजना जब उसको छोड़ दिया था जंगल में गुफा में गए तो वहां सिंह आया था तो घबरा गई थी, तो इतने में कहीं से अष्टापद आ गए तो सिंह भाग गए, ऐसा आता है उसमें, प्रथमान युग में आती बात है। तो ये हमने आगम में ही पढ़ा है अष्टापद का नाम, अन्य तो कहीं नहीं आता। चलो अभी अपने मूल विषय पर आते हैं, कौन कहाँ भेजना वो देख लिया हमने। हाँ देखो हम ये शासाधन में देख रहे थे, 40 पेज पर चौथी लाइन पढ़ी थी, फिर दोबारा पढ़ेंगे। शासाधन समय दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव सबसे अधिक संक्लेश परिणाम वाला है और मिथ्यात्व के अभिमुख है, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी। क्योंकि अभी अभी जो गिर कर आया है उषम संयुक्त में से, उससे जो अभी मिथ्यात्व में जाने के सम्मुख है उसको ले लेना। हाँ उसको ज्यादा होगा। आयु हाँ साधन में हमने अंत कोड़ा कोड़ी देखा था, याद है? सम्यक तो सी गिर कर आया है शासन में भी और सम्यक मिथ्यात्व में भी, अंत कोड़ा कोड़ी देखा था। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर मनुष्य तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला है वह आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। यहाँ तिरियंच को भी नहीं लिया, मनुष्य को लिया। ग्रहवेग तक जाएगा इसलिए मनुष्य लिया, क्योंकि अभी उपशम समय तो गिर कर आए, यानी मुनि थे, छठे में से गिरकर दूसरे में आए हैं, नवे ग्रवे। यानी 31 साल। ख्याल में आए ना? यानी छठे से दूसरे में आ गए और वहां मिथ्यात्व के अभिमुख है, तब उन्होंने आयु बंद किया, शुरुआत किया ऐसे के लिए। क्यों ऐसे? जब वो सात कर्म के लिए बताए, आयु कर्म के लिए पहले समय में ठीक विशुद्ध लेना ना। हाँ बराबर, यानी सात कर्मों में मिथ्यात्व के अभिमुख वाला लेना और यहाँ अभी अभी गिर कर आया है वो लेना, बराबर। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला है और मिथ्यात्व के अभिमुख है, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। आयु में क्या होगा? आयु का उत्कृष्ट कौन होगा? तीसरे गुणस्थान में आयु। हमने अश्विन भाई को रोका था उत्तर देने के लिए। उनको कोई तो मिलता है सहारा। असंगियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर पंचेंद्रिय जीव पर्याप्त है और सबसे अधिक संक्लेश परिणाम वाला है। असंगी तो है ही, अब ये असंगियों में जो उत्कृष्ट बंध कितना करेगा ये तो आप बताएंगे। हाँ एक पूर्व कोटि का बस इतना ही, आयु की पूछ नहीं रहे, सात कर्मों का पूछ रहे। कितना करेगा वो मेरा प्रश्न है, बोलो। याद नहीं? हाँ बोलो बोलो। हजार सागर हमने देखा ना, एक इंद्रिय को एक सागर होता है, इंद्रिय को 25 सागर होता है, 50, 100, 1000, और वो भी मिथ्यात्व का होगा इतना, बाकी तो ज्ञान वर्णादि का 3 सप्तमांश, नाम गोत्र का 2 सप्तमांश, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो तप प्राग संक्लेश परिणाम वाला असंगी जीव है वह आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है। अच्छा, ये देव की उतनी आयु उत्कृष्ट नहीं बांधेगा। हमने देखा था पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण आयु का बंध करता है। इसका अर्थ क्या है? नरकायु अधिक बनती है, देवायु नहीं बनती है। देवायु का बंद कर सकता है, नरकायु का बंद सकता है। अधिक से अधिक कितना? तो पल्ले का असंख्यात भाग, वो पल्ले का असंख्यात भाग वाला देवायु का स्थिति बंद नरकायु से कम होगी, क्योंकि हमने देखा था ना ज्योतिष में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो मिनिमम आयु पल्ले के 8वां भाग है। विशेषात अभी पढ़ा नहीं, देखेंगे। हाँ, अनाहारकों में सब कथन कार्मण का योगियों के समान है, जो हमने पढ़ा था। तो कार्मण का योगी में कितना स्थिति बंद होगा? तो अंत कोड़ा कुड़ी का होगा, तो उसमें तो संकलेश परिणाम वाला लेना, आयु के बंध का सवाल नहीं है। अब उसमें भी अनाहारक में भी संगी पंचेंद्रिय लगाना, क्योंकि वहां भी अनाहारकों में एक इंद्रिय भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है, संगी को ले लेना वहां पर। अद्धा छेद में देख लो, नहीं स्वामी तो नहीं देखना पड़ेगा, अद्धा छेद में क्या होगा? अंत कोड़ा कुड़ी बात तो यही है, अंत कोड़ा कुड़ी संगी को होगा। हाँ, संगी चारों गति का, परंतु संगी होना चाहिए। विशेषा असंगी जीव मरकर भवनवासी और व्यंतर देव भी होते हैं और प्रथम नरक में भी जाते हैं। यहाँ असंगियों के आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणामों से ही कराया है, इससे विदित होता है कि असंगियों के देवायु की अपेक्षा नरकायु का स्थिति बंध अधिक होता है। यानी इससे हम डिराइव करेंगे, हम ऐसा उल्टा नहीं सोचे कि उसको क्यों नहीं लिया। हाँ बराबर है, कितना सही है, क्योंकि मूल में जो बात आई है उससे हमें डिराइव करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। कथन तो ऐसे आएगा पल्ले का असंख्यात भाग, तो वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ, उत्कृष्ट स्थितिबंध के स्वामित्व की बात यहाँ खत्म होती है। अब जगन्य स्वामी का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ की अपेक्षा 6 कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? कहते जो अन्यतर सूक्ष्म सांप्रायिक शपक जीव अंतिम स्थितिबंध में अवस्थित है। अंतिम समय में नहीं कहा, अंतिम स्थितिबंध कहा, जो लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक चलता है, वह 6 कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी है। अब इसके सबके परिणाम समान है, यहाँ इसलिए कोई परिणामों की बात नहीं दी कि अधिक वाला है वगैरह। तो ये 6 कर्मों की बात वहां ली, किसको छोड़ा? मुंह और आयु को छोड़ा। अब मोहनी के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक जीव अंतिम जघन्य स्थितिबंध में अवस्थित है, वह मोहनी के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। जब हमने अन्य 6 की बात की थी, वहाँ कितना स्थितिबंध होता है हर एक का? बोलो,
6, 8, 12।
ज्ञान दर्शन और अंतराय का अंतर्मुहूर्त है, नाम गोत्र में, या तो मूल प्रकृति गिना रहे, नाम और गोत्र कहेंगे, जो यशस् कीर्ति उच्च गोत्र है वो 8 मुहूर्त का।
17 है।
अब हम आते हैं 41 प्रश्न पर। आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? मूल में आयु कर्म की जगन्य स्थिति बंधने वाला कौन सी जगन्य स्थिति बांधेगा? लब्धी पर्यंत क्षुल्लक भव पावल क्षुद्र भव
लब्धीपर्यंत सगळ्याची सारखी असेल असं नाही.
हा मी म्हणतो उसको क्षुल्लक भव पे
बांधण्याची अपेक्षा कमी जास्त होती.
हा होती बंधने वाले भी जगाने से उत्कृष्ट तक बंध अलग अलग है. तो उसमें ये कौन बांध सकता है जो अन्यतर तिर्यंच मनुष्य एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय संगी असंगी बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जो भी हो देव और नारकी को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे. साकार जागृत है इसमें भी साकार लिया हो तत्प्राय जो संकलेश परिणाम वाला है और जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिति बंद कर रहा है. ये महत्व की बात थी उन्होंने जघन्य आबादा यहां भी बताई. इसका अर्थ वो तो अंत में बंधने वाला वो लब्धि पर्याप्त क्या भी बनता है यानी उसकी आबादा भी जघन्य होती है. जैसे हमने हमने उल्टा भी नहीं उसकी बात नहीं जघन्य आबादा ये कहना चाहते हैं कि जिसने शुरू में आयु बंद किया है वो लब्धि पर्याप्त की आयु नहीं बांधते ऐसा हो सकता है. यानी उत्कृष्ट आबादा के साथ क्या जघन्य आयु का बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता वो प्रश्न है. यहाँ तो जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिति बंद कर रहा है वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है. यानी जो लब्धि पर्याप्त की भी आयु बांधता है और जो शुरू में बांधता है वो तो अधिक बांधता होगा शायद. वही तो यह प्रश्न है. रोगी तो लब्धि पर्याप्त की भी लंबी आयु बांधेगा. ये पता नहीं है ये तो जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिति बंद कर रहा है वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है.
तो उत्कृष्ट भी इसे
बताए थे उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति
बंद
उत्कृष्ट. हाँ उत्कृष्ट हमने तो ऐसे ही उसमें से अर्थ निकाला.
चार विकल्प लेने पड़ेंगे इसमें जघन्य स्थिति जघन्य आबादा जघन्य स्थिति उत्कृष्ट आबादा.
हाँ वही तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है फिर प्रश्न इसमें से निकलता है. वहां भी हमने चर्चा की थी तो वहां तो हमने ऐसे इन्फ्रेंस किया कि पहले बार वो बांधता है दूसरी बार भी उत्कृष्ट तो बांध ही सकता है ये तो हमने वहां बात देखी थी.
यहां से भी निकल रहा है कि वो जो अंत में जो बांधता हुई जघन्य आबादा वाले जघन्य स्थिति बंद
जनी जास्त बांधले असेल ते जास्त राहणार जी जास्त असेल दहा पिढ्यात ते जास्त आयुष्य पुढे
जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिती बंद कर रहा है. यानी जो हमने बंध का काल देखा वो अंतिम समय में घटित होगा. जैसे हमने पहले समय में उत्कृष्ट बंध होता है फिर घटता जाता है तो आयु बंध का जो काल है उसके अंतिम समय में वो जघन्य होगा.
जब उत्कृष्ट पहले समय में ले सकते हैं तो जघन्य अंतिम समय में लीजिए आयु के लिए.
असंक्षेप आधा की पहले ही वो ही लेना पड़ेगा ना. और उसमें भी जो अंतर्मुहूर्त तक बंद हो रहा है उसका अंतिम समय लेना पड़ेगा. इसी प्रकार मनुष्य त्रिक यानी ये सभी उसकी आयु बांध सकते हैं. पंचेंद्रिय द्विक त्रसद्विक पांच मनोयोगी पांच मनोयोगी काय योगी औदारिक काय योगी अपगत वेदी लोक कषाई अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मनपरे ज्ञानी संयत चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी शुक्ल लेशा वाले भव्य सिद्धिक सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि संगी और आहार जीवन के जानना चाहिए किंतु आयु के संबंध में कुछ विशेषता है. देखो देवी ये क्या कहना चाहते हैं. ये अपने अभी उत्कृष्ट नहीं चल रही जघन्य चल रही. तो जघन्य हमने कहां देखा था तो श्रेणी में देखा था दसवें में नौवें में जहां योग्य है. अब यहां कहते हैं मनुष्य त्रिक भी वो श्रेणी चढ़ते उनमें भी घटित होगा. पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त में भी घटित होगा क्योंकि उसमें भी मनुष्य आ गए. त्रस में आ गए, मनोयोगी वचन योगी काय योगी अवतारिक में आ गए, अपगत वेदी में भी कहेंगे क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय वाले अपगत वेदी ही तो है। लोभ कषाय, क्योंकि लोभ कषाय में वो दसवा गुणस्थान घटित होता है। आप निर्वोधि श्रुता उदी ज्ञानी लोभ कषाय मार्गणा, लोभ कषाय वाले अन्य वो कषाय वाले लेंगे तो नौवे तक होगा, तो वो मार्गणा में जाएगा, ओप के समान नहीं होगा जगत में। संयत चक्षु चक्षु दर्शनी दोनों लिया, अवधि दर्शनी लिए, शुक्ल लेशा वहां होती है वो भी ले लिया, भव्य ही है वो, समय दृष्टि है, क्षायिक समय दृष्टि है, संज्ञा और आहार भी वहां घटित होता है, तो ये अन्य तो ये सात कर्मों के लिए तो घटित हुआ। अब आयु के संबंध में क्या विशेषता है, तो अपगत जीव वेदी जीव के आयु कर्म का बंधन नहीं होता, बाकी तो सात कर्मों के जघन्य बंध में तो घटित होगा। अभिनिबोधि क्षुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि जीवों में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी, अभी जघन्य की बात है, उत्कृष्ट तो हम सोचते थे हाँ वो प्रमोद का संयत है, वो तो कीर्ति सागर को बांधने वाला है, तो यहाँ जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है समय दृष्टि होते हुए भी, तो कहते अन्यतर देव या नारक जो तक प्रायः संकलिश परिणाम वाला है और जघन्य आबाधा के साथ जघन्य स्थिति का बंध कर रहा है वह आयु के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। तो कितनी है देव अंतर्मूर्त की नहीं बांधेगा एक इंद्रिय की, समय दृष्टि लिया संयमी कहूँ समय दृष्टि है। अच्छा 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 समय दृष्टि लिया अन्यत्र कहाँ समय दृष्टि ऊपर, अच्छा समय तो की मार्गणा ली सॉरी सॉरी हाँ तो वर्ष पृथक वाली हो हाँ, क्योंकि हमने अन्य सात कर्मों के लिए इसकी मार्गणा की बात की थी बराबर, अन्य सात कर्मों का जघन्य ये कर रहे हैं, ये जो आयु का जघन्य कितने करेंगे उसकी बात है। मन परिज्ञानी और संयत जीव में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर प्रमत्त संयत जीव जो तक प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला है वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। वो कितना लिया था हमने पल्ले पल्ले का कुछ कहा हमने संख्या पल्ले लिया था कि एक मिनट निकालो निकालो साधिक पल्ले लिया था अद्धा छेद में जघन्य लेना है जघन्य के प्रकरण में ये तो वर्ष पृथक तो हमने आयु कर्म का देखा था। मन परिज्ञानी और संयत्व पल्लोपम पृथक है पेज नंबर 24 पहली लाइन और वर्ष पृथक की बात पेज 23 पर आएगी। पल्ल पृथक मिला ना पहली लाइन में शुक्ल लेशा में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है अन्यतर देव जो मिथ्या दृष्टि है यह मिथ्या दृष्टि बोलिया तत्प्रायोग संकलेश परिणाम वाला है और जघन्य आबाधा के साथ जघन्य स्थिति का बंध कर रहा है। अब यह शुक्ल लेशा वाला कितना कर सकता है हमने देखा था तो मास पृथक को लिया वही पेज 24 पर वहां ऊपर जो है वो तो मन पर यानी संयमित है, अब यहां जो है वो मात्र शुक्ल लेशा की बात है, इसमें हम मिथ्या दृष्टि देव लिए तो मास पृथक पाया। तो अन्यतर देव जो मिथ्या दृष्टि है तत्प्राय वे संकलेश परिणाम वाला है और जघन्य आबाधा के साथ जघन्य स्थिति का बंद कर रहा है। वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है। शेष मार्गणाओं में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी ओघ के समान है। ओघ के समान है वो तो क्षुद्र भव वाली है विशेषार्थ। यहाँ ओघ से आठों कर्मों के जघन्य स्थितिबंध के स्वामी का विचार किया गया है। सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध क्षपक श्रेणी में जहाँ जिस कर्म की बंध विच्छित्ति होती है वहाँ होता है। इस हिसाब से छह कर्मों का जघन्य स्थितिबंध क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में प्राप्त होता है और मोहनीय का क्षपक अनिवृत्तिकरण में, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय में मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। तथा आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध सब प्रकार के मनुष्य और तिरियंशों के होता है, क्योंकि इन सब के असंक्षेपाधा काल प्रमाण आयु कर्म के बंध होने में कोई बाधा नहीं आती, यानी वो भी आवश्यक कंडीशन बताए उन्होंने। यहाँ वे मार्गणाएं गिनाई है जिनमें क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से यह ओघ प्ररूपणा बन जाती है। मात्र इन सब मार्गणाओं में ओघ के समान आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध नहीं प्राप्त, क्योंकि वो तो क्षपक श्रेणी में बताई है। क्योंकि इनमें से अभिनिबोधिक आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मिथ्यात्व की प्राप्ति संभव नहीं है, और शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व की प्राप्ति भी हो गई तो वहाँ परिणामों की इतनी उज्ज्वलता रहती है जिससे वहाँ आयु का असंक्षेपाधा काल प्रमाण बंध नहीं होता। ये बंध के लिए असंक्षेपाधा काल बताया उन्होंने।
शुक्ल लेशा में
ये असंक्षेपाधा काल प्रमाण बंध कहा, बंध के लिए कहा, ये तो बाद में जितना काल रहता है उसके लिए असंक्षेपाधा शब्द आता है। इन्होंने यहाँ बंध को असंक्षेपाधा काल प्रमाण बंध कहा। यही कारण है कि इन मार्गणाओं में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है इस बात का अलग से निर्देश किया है। यानी वो जघन्य आबाधा वही घटित होती है असंक्षेपाधा में, और वो बंद होता है क्षुद्र भव ग्रह, उसके मिनिमम बंद जो पॉसिबल है। किसके
शुक्ल एशिया में आयु का बंद नहीं होता,
ऐसा कहाँ लिखा? शुक्ल लेशा में क्या वो एक इंद्रिय का बंद करेगा?
तो वहाँ परिणाम की इतनी उज्ज्वलता रहती है जिससे वहाँ आयु का असंक्षेपाधा काल प्रमाण बंध नहीं होता।
इसका अर्थ है वो क्षुद्र भव का बंध नहीं कर, वो काल को नहीं लेना है वहाँ पर। हाँ, आपने ये यहाँ अध्या असंक्षेप असंक्षेपाधा अ शब्द आने अर्थात जिससे छोटा यानी संक्षिप्त कोई काल न हो, ऐसे अवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक जितने आबाधा के विकल्प आबाधा के लिए, उनमें देव और नारकियों के आयु की उत्कृष्ट निषेध स्थिति संभव है। आयु की उत्कृष्ट निषेध स्थिति संभव है। हाँ, ये आबादा के लिए ही असंक्षेप आता है। हाँ, में देव और नारकियों के आयु की उत्कृष्ट निषेध स्थिति संभव है। हाँ, आगे लिखते हैं, जघन्य विश्रमण काल पूर्वक जघन्य आयु बंध काल असंक्षेपाधा कहा जाता है। अभिबंध के काल को भी बताया, जघन्य विश्रमण काल पूर्वक जघन्य आयुबंध काल असंक्षेपादा कहा जाता है। वह यव मध्य के अंतिम समय से लेकर जघन्य आयुबंध के अंतिम समय तक होता है। यह असंक्षेपादा तृतीय त्रिभाग में ही होता है। इसमें भी पहला त्रिभाग, दूसरा त्रिभाग, तीसरा त्रिभाग लिया,
लास्ट त्रिभाग इसमें तीसरा
असंक्षेपाध्या जो अवलिक असंख्यातवा भाग प्रमाण काल गुज्जमान आयु का अवशेष रहे उसके पहले अंतर्मुहूर्त काल मात्र समय प्रबद्ध करे परभव आयु को बांधी पूर्ण करे ऐसा नियम जानना। यानी इससे जघन्य आयु की आबादा नहीं पाई जाती उसको
असंक्षेपाध्या,
नहीं आयु का प्रमाण असंक्षेपाध्या नहीं है आबादा। यानी बंधक कब होता है उसकी बात है, बंधक कितना होता है उसकी बात नहीं। असंक्षेपाध्या तो मिनिमम आबादा है, आयु कर्म की सबसे कम आबादा जघन्य आबादा, यानी इससे कम नहीं हो सकती। यानी इतना काल तो जाएगा ही जाएगा आयु बंध के पश्चात जब मरण आएगा, या मरण के इतने पूर्व तक तो आयु बंध कंप्लीट होगा ही होगा। आवली का असंख्या तो होगा नहीं, इसको भी कहीं कहीं
हाँ
बराबर अंतिम जो आयुबंध का अंतिम जो समय है उसके बाद आवली का असंख्या अथवा भाग तो रहता ही रहता है। उसको भी उपचार से अंतर्मुहूर्त कह देते हैं, ना बात असंक्षेपाध्या वो पूरा अंतर्मुहूर्त नहीं, आवली का असंख्या अथवा भाग अंतर्मुहूर्त तो आवली से शुरू होता है। इन जनरली तो अंतर्मुहूर्त पहले तो आयुबंध होता ही होता है, परंतु कहीं इसको अंतर्मुहूर्त भी कहा, कहीं इसको आवली का असंख्यात भाग भी कहा। आगे बढ़ेंगे, तभी आदेश से नरक गति में नारकियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। अन्यतर जो असंगी पंचेन्द्रिय चर लिया पंचेंद्रिय चर ने पंचेंद्रिय में से आया हुआ जीव है ना, अन्य तो जो असंगी पंचेंद्रिय चर जीव साकार जागृत है सर्व विशुद्ध है और प्रथम द्वितीय समय में स्थित है, विग्रह गति वाला है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है क्योंकि वो असंगी जैसा स्थिति बंद कर रहे
हैं।
आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी कौन है। अन्यथा जो मिथ्या दृष्टि तत्प्राग जघन्य संकलेश परिणाम वाला है वह जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिति का बंध कर रहा है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है। ये कितना देखा था अंतर में देखा, देवनारकी की बात कहाँ लिखी है मिथ्या दृष्टि की, नहीं नहीं जघन्य आयु बंद चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी
फिर से दोबारा कौन सी बात पूछ रहे
आप।
आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। अन्य तो जो मिथ्या दृष्टि तत्प्राय के जघन्य संकलेश परिणाम वाला है, उत्कृष्ट चाहिए, उत्कृष्ट संकलेश से आयु छोटी बंधेगी ना, परिणाम में क्या लिया उसको? उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया होगा, कहाँ पर तत्प्राग संकलेश परिणाम लिया था? शुक्ल लेशा में भी, और आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी ओघ में भी लिया था। साकार जागृत है, तत्प्राग संकलेश वाला है। आप उत्कृष्ट कहाँ पढ़ रहे हो? प्राकृत में आदेश है ना, नेरेये में आयु जहन टीवी कस अन्न मिच्छा दीजिए तब पाओगे जहन संकलेश जहन आबादा जहन टीवी बंद उपकस चाहिए ऐसा लगता है ना। क्योंकि हमने देखा था ना, मनुष्यायु तिर्यन चाहिए, विशुद्धि में अधिक बंधेगी, संकलेश में कम बंधेगी। जगन्य संकलेश विशुद्धि हो गई ना उसकी, तत्प्राय जो है देखो, ये हमने इसमें देखना, अद्धा छेद में देख लो, आबादा की कथन सामान्य नारकियों में हमने देखा था। अंतर्मूर्त प्रमाण देखा, पेज 25 पेज ऊपर विशेषार्थ में हमने देखा था, तीसरी चौथी लाइन, या इसमें मूल में है ना, 24 पेज पर लास्ट में, आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। संकलेश कम तो स्थिति अधिक बन जाएगी क्या? नहीं,
मनुष्य के होता है, मनुष्य
हाँ विशुद्धि से ज्यादा आयु, विशुद्धि से ज्यादा आयु, संकलेश से कम आयु, तो इसी कैसे हाँ उल्टा हो रहा है ना। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में पढ़ो आगे, मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव भवनवासी और विंतर देवों में जानना चाहिए। मैंने कौन सा लिया, वो असंगी लिया, मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला, ये पहले नारकियों में उत्पन्न होने वाला देखा। प्रथम पृथ्वी में इसलिए कहा कि असंगी पहले पृथ्वी में उत्पन्न होता है, अब मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न होने वाला जीव लिया, यहाँ पर सामान्य देव लिए, भवनवासी व्यंतर लिए, यानी असंगी जहां जहां उत्पन्न होते उसके बाद मनुष्य पर्याप्त नहीं लेते हुए अपर्याप्त ले लिए। क्या इसे भी मनुष्य पर्याप्तों का बंध कम होता है, वो असंगी मरकर वहां जा रहा है, वो लिया। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर असंयत सम्य दृष्टि, सर्व विशुद्ध परिणाम वाला जीव सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। कौन सा लेना, औपशमिक समय दृष्टि लेना, के विषय योजना वाला लेना। मिस योजना में फिर उसकी विशुद्धि और बढ़ती है ना वहाँ पर
लास्ट
उपशम भी कर रहा है विसर्जन भी
दो मत है ना उपशम वाला नहीं कर सकता ऐसा मत है और करता है तो वो जय धोला में करता है उसमें इसमें भी आया नहीं है अभी आया नहीं है
अलग आचार्य
जय धोला
ने कहा
जय धोला अभी यहाँ देखेंगे उनकी अभी मत नहीं आया है अब आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का स्वामी पहली पृथ्वी के समान है यानी अंतर्मुख इसी प्रकार ज्योतिषियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के जानना चाहिए इतनी विशेषता है यानी जैसे वहां असंगी उत्पन्न नहीं होते वो समानता होते तो उनका बंध कम से कम कौन करेगा सात कर्मों का तो जो ज्यादा भी ज्यादा विशुद्ध है वो करेगा इतनी विशेषता है अनुदिश से लेकर सर्वांश सिद्धि तक के देवों में समय दृष्टि जीव आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है अन्यत्र मिथ्या दृष्टि को लिया यहाँ पर समय दृष्टि वहाँ सारी समय दृष्टि ही है उसमें भी आयु की रेंज होगी ना अधिक से अधिक करोड़ पूर्व की बांधेंगे और कम से कम हमने देखा था वर्ष पृथक तो बांधेंगे हमने देखे थे देखो आनत प्राण तारा नक्षत्र में मास पृथक्व है पेज 25 लास्ट सर्वार सिद्धि तक वर्ष पृथक्व प्रमाण है और अंतर्मूर्त आबादा बताए अब विशेषार्थ पढ़े नरक में असंगी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है और उसके अपर्याप्त अवस्था में असंगी के योग्य स्थितिबंध होता है इसी से सामान्य से नरक में असंगी पंचेंद्रिय चर जीव को पंचेंद्रिय के बाद कौमा लगा के चर क्यों लिखा ऊपर क्या लिखा है पंचेंद्रिय चर जीव असंगी पंचेंद्री सागर जागा असंगी असंज सरस्वती पंचेंद्रिय चर क्यों कहा असंगी पंचेंद्रिय चर जीव को पंचेंद्रिय चर ने पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रियों में से जो आकर यहाँ उत्पन्न हुआ है वो लेना है ना
नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या जलचर
कौन सा लेना
उसका क्या सवाल है
अर्थ नहीं मिल रहा
है असंगी पंचेंद्रिय है वो कोई भी क्यों ना हो
चलने वाला उसमें रहने वाला
उसमें से मरकर आया है ऐसा लेना उसमें से ये है तो नारकी उसको नारकी कहेंगे हम
असंगी जो
परंतु असंगी में से मरकर आया है इसलिए असंगी पंचेंद्रिय चर कहा उसको सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कहा है प्रथम नरक देव भवनवासी और यंत्र देव इन मार्गनाओं में भी असंगी जीव मरकर उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ सामान्य नरक के समान प्ररूपना की है द्वितीय आदि नरकों में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के सात कर्मों का स्थिति बंध न्यून होता है शेष रहे देवों में भी ऐसा ही जानना चाहिए इसलिए इन मार्गनाओं में सर्व विशुद्ध परिणाम वाले सम्यक दृष्टि को सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कहा है हम जघन्य की बात देख रहे हैं अनुदिश से आगे सब देव समय दृष्टि ही होते हैं इसलिए वहां तो समय दृष्टि तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणामों के होने पर आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी होता है आयु के लिए आयु के लिए
जो आगे हम लोग
नहीं वो तो कोई सवाल ही नहीं ना वो तो मिथ्या दृष्टि में उन्होंने वो बात उन्होंने लिखी थी, परंतु ये उत्कृष्ट होना चाहिए। पर यहाँ जो अन्य मार्गनाएं गिनाई है उनमें आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध की योग्यता मिथ्या दृष्टि के ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि के आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम हो सकते हैं, उतने अन्य गुणस्थान वाले के नहीं। तो ये हमने वहाँ जघन्य निकालकर उत्कृष्ट संकलेश लिखा था, वो बराबर था। तीरियन चौमे सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर जो बादर एकेंद्रीय जीव पर्याप्त है। हम तीरियन चौमे सोचते पांचवें गुणस्थान वाला होगा, ऊपर जाने वाला, पर तो सिंह है, उसको तो अंत कोड़ा कोड़ी वाला होगा। ये तो एकेंद्रीय पर्याप्त बादर सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। हमने देखा ना उसकी जो उत्कृष्ट है उसमें से पल्ले का असंख्यात भाग कम। मिथ्यात्व के लिए लिखेंगे हम सागर, एक सागर में से पल्ले का असंख्यात भाग कम।
बट ये जो हमको बात है जो बोल रहे हैं तिरंज में, हमने तो पढ़ा था ना कर्मकांड की 84 प्रकृति का यही बनता है जघन्य स्थितिबंध।
हाँ तो
ये
वही तो बता रहे ऐसा कैसे होगा ओग में तो क्षपक शनि वाला है।
अच्छा।
ओग में क्षपक शनि वाला लिया ना जगह जगन्य से, उसमें लिखा था क्षपक को छोड़कर
17 शिक्षा छोड़ी थी उन्होंने, सूक्ष्म छोड़ दी थी उन्होंने, चार आयु से छोड़ गए।
हाँ परंतु उसका उसका अर्थ क्या है, क्षपक में या जगन्य में जगन्य होगा? जघन्य स्थितिबंध किसके होगा तो क्षपक के ही होगा, पर यह तो मूल प्रकृति की बात चल रही है।
हाँ
बिल्कुल
आदेश।
हाँ उत्तर प्रकृतियों में कितने ही प्रकृतियों का, जैसे मिथ्यात्व का कौन करेगा तो नेचुरली एक इंद्रिय करेगा, एक इंद्रिय जीव ही जघन्य करेगा, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध तो समय दृष्टि के होता ही नहीं है। जो बंध क्षपक श्रेणी में हो रहा है उसका जघन्य हो जाएगा वहां पर, जो बाकी मिथ्यात्व अवस्था में जो बनती है वो तो एक इंद्रियों की ही जघन्य बन देगी। ये बात अलग है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी ओग के समान है, जैसे तीन इंचों में तो फिर लगभग प्रमाण, इसी प्रकार सब एक इंद्रियों यानी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी एक इंद्रियों में, सब पांचों स्थावर काय में, औदारिक मिश्र का योगी में, कार्मण का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, अभव्य सिद्धि, मिथ्या दृष्टि, असंग और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। इन मार्गणाओं में भी ये बात घटित होगी, क्योंकि ये सब एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय पर्याप्त तो उन मार्गणाओं में भी पाए जाते हैं। विशेषार्थ तीरियंचों में सात कर्मों का सबसे कम स्थितिबंध बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों के होता है, इसी से यहाँ तीरियंच गति में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध के स्वामी का कथन उनकी मुख्यता से किया है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें प्राय यही स्थितिबंध संभव होने से, यह स्थितिबंध संभव होने से उनका कथन ओग तीरियंचों के समान करने का निर्देश किया। ओग के समान ओग तीरियंच का इन सब मार्गणाओं में आयु कर्म का क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण जघन्य स्थितिबंध संभव है, इसलिए आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी का कथन भोग के समान किया है।
वो जो एक लागू
यानी सभी तीर्यांचों में ही होता है।
अच्छा।
भले वो पंचेंद्रीय क्यों ना हो, एक इंद्रिय क्यों ना हो, वो क्षुल्लक भोग तो धारण कर ही सकता है, इसलिए उसमें घटित हो। सभी मरकर क्षुद्र भोग ग्रहण कर सकते हैं, लब्धि पर्याप्त में जा सकते हैं। आयु के बारे में तो सभी प्रकार के तीर्यंचों में ये बात घटित होगी, यानी तीर्यंचों के जो प्रकार है उसमें होगी, तीर्यंचों में जो समय दृष्टि उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ तो बस तीर्यंच गति की अपेक्षा जो भेद किए हैं, तो तीर्यंच सामान्य तीर्यंच पंचेंद्रिय लभ्य पर्या पंचेन्द्रिय योनिमति सब में घटित होगा। पंचेन्द्रिय तीरियंच त्रिक में सात कर्मों में अभी ये वेरिएशन कितना बनता है उसमें, सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर जो असंगी जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति का बंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। अपनी अपनी जो उत्कृष्ट है उसमें से पल्ल का संख्यात्मक भाग कम, अपनी अपनी नहीं जिस प्रकृति की बात,
जिस हजार,
हजार सागर कहो या हजार का वो तीन सप्तमांश या दो सप्तमांश का। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर संगी या असंगी जीव जो कि पर्याप्त हो या अपर्याप्त, साकार जागृत हो, तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला हो और जघन्य स्थिति बंध कर रहा हो, वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तीरिंच अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त के जानना चाहिए। यानी हमने वहां तो लिखा ना, वहां उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम लिखा था तत्प्रायोग्य, वो उत्कृष्ट भी लिखने की जरूरत नहीं, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम वाला होना चाहिए, जगन्य निकालना चाहिए, उत्कृष्ट डालने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम आयु कर्म की बात हमेशा तत्प्रायोग्य लिखते हैं। यह भी आई ना बात अभी अभी जो हमने पढ़ा था कि तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला, यहीं पर उसका रेफरेंस आया। देखो हमने 42 पृष्ठ पर 57 नंबर के सेकंड पैराग्राफ में चौथी लाइन में लास्ट में जगन्नी के बदले उत्कृष्ट लिखा था, वो जगन्नी शब्द ही निकालना, तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला है इतना ही पहले चाहिए। हाँ नहीं लिखना, हाँ बस इसका अर्थ ऐसा निकलता है ना, जहाँ आयु बंध कम है वहाँ आबादा भी कम है, उत्कृष्ट आयु का बंध अधिक आबादा में, ऐसा कुछ निकल रहा है अर्थ, पता नहीं क्या
का
अभी उन्होंने कौन है उसका स्वामी में क्या आता है।
नहीं, ये टोटल जो बंध होता है उसकी रेडियम स्थिति की अपेक्षा के साथ जो जगह स्थिति बचेगी वो टोटल स्थिति जगह हो जाएगी, क्योंकि
उत्कृष्ट
के साथ भी
जगन्य
स्थिति का बंध हो सकता है।
ऐसे हम अभी तक तो कहे आए हैं, परंतु यहाँ तो उन्होंने बार बार क्या बताया, जगन्य आबादा के साथ जगन्य आयु,
आबादा प्लस स्थिति, वो टोटल स्थिति पकड़ रहे,
आयु में कभी उसको स्थिति में पकड़ते ही नहीं,
आबादा का दूसरा कारण
आयु में कभी भी आबादा को स्थिति में पकड़ते नहीं, आयु की स्थिति अलग है, आबादा अलग है, अन्य कर्मों में घटित होता है और अन्य कर्मों में आबादा के साथ ही इंक्लूड करके बताई जाती है, वहां तो कोई सवाल ही नहीं है। अन्य कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी तो उत्कृष्ट ही आबादा होगी, जगन्य की जगन्य ही आबादा होगी, आयु कर्म में ऐसा रूल नहीं है, परंतु उन्होंने स्वामी में हमेशा वो जगन्य के साथ जगन्य लगाया, उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट लिया, ये इसलिए जरा सपने सवाल पैदा हुए। अब यहाँ आते हैं 44 पृष्ठ पर, द्विइंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीवों में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर पर्याप्त चाहिए पज्जतस्य, क्योंकि उत्कृष्ट हो या जघन्य हो पर्याप्त उनके ही होगा, अन्यतर पर्याप्त जीव चाहिए, अन्यतर पर्याप्त जीव साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, अब यहाँ पर्याप्त या अपर्याप्त दोनों ही कर सकते हैं ना, जो अन्यतर जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त
सर्व विषय
सर्व विषय अत्यंत मंद परिणाम तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ सर्व विशुद्ध ने अत्यंत विशुद्ध उनके लिए हाँ बरोबर आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त तत्प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाला है तत्प्रायोगिक शब्द है ना और जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थिति बंध कर रहा है नहीं 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 उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं परंतु जो अंत में आयु का बंद कर रहे हैं उसको जघन्य बंद किया ऐसे इसमें से अर्थ निकल रहा है जघन्य जघन्य आबादा ने असंक्षेपा धा लिया हाँ ऐसा तो अभी तक तो हमने तो ऐसा है कि उत्कृष्ट आबादा के साथ भी जघन्य बंद कर सकता है ऐसा हमने देखा है परंतु यहाँ बार बार वो जघन्य आबादा की बात कर रहे हैं हाँ ये हो सकता है कि बाबा वो तो पहले समय से अंतिम समय में वो तो आयु का बंध कम होगा जैसे आपने बताया था वो घटती जाती है वो बात यहाँ घटित होगी दे तो नहीं करेंगे परंतु मनुष्य तो कर सकते हैं पर अभी तक तो हमने पढ़ने में नहीं आया हमने ये बताया था कि वो प्रोपोर्शन में तो है ही नहीं है आयु की जो स्थिति बनती है उसकी आबादा उसके प्रतिघात रूप से नहीं होती है तो प्रोपोर्शन में नहीं होती इसी प्रकार इन तीनों में यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय में पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए यानी उसके भेद करके अगर कथन करेंगे तो उनमें भी वो बात घटित होगी तथा त्रस पर्याप्तकों में द्विंद्रिय अपर्याप्तकों के समान बन गए यानी त्रस में जो जघन्य कौन कर रहा है तो त्रसो में जघन्य द्विंद्रिय कर रहा है त्रस अपर्याप्त लिया ना त्रस पर्याप्त में कौन कर रहा है जघन्य
त्रस पर्याप्त में द्विंद्रिय
हाँ बोलो त्रस पर्याप्त में जघन्य स्थिति बंध कौन कर रहा है इसलिए अपर्याप्त को मैं द्विंद्रिय को लिया और पर्याप्त को मैं तो सूक्ष्म संप्रदाय वाले लिए अब यही रखूंगी हम जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक